Esatto. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. तो इस क्लास में हम सूरह बनी इसराइल की तफसीर पढ़ते हैं मारुफुल कुरान की जिल्द नंबर 5 से। और इसमें आज अभी जो आयात तिलावत की गई उनकी उनका तर्जुमा वगैरह भी हमने पढ़ना शुरू करना है, लेकिन पहले पिछली आयात की थोड़ी सी तफसीर बाकी थी। मारुफ मसाइल हम पढ़ रहे थे आयत नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 की, जिसमें अल्लाह ताला ने बनी इसराइल का जिक्र किया था कि हमने बनी इसराइल को बता दिया था उनकी किताब के अंदर कि तुम लोग 2 मरतबा जमीन के अंदर फसाद करोगे और दोनों मरतबा तुम्हारे ऊपर जो है वो बंदे मुसल्लत कर दिए जाएंगे, जंगजू बंदे मुसल्लत कर दिए जाएंगे। तो उसमें फिर हमने बहुत सारी तफसील जो हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने लिखी है कि किस किस तरीके से बनी इसराइल ने कब कब जमीन में फसाद किया, यानी अल्लाह ताला की नाफरमानी करी, और अल्लाह ताला ने फिर उनको कैसे कैसे जो है वो गैर मुस्लिम हुक्मरानों के हाथों सजाएं दी। ठीक है, तो पेज नंबर 451 के ऊपर हम थे कि जिसमें कि हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने एक उनवान बांधा था एक अजीब मामला के नाम से कि अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर अपनी इबादत के लिए 2 जगहों को इबादत करने वालों का क़िबला बनाया है, एक बैतुल मुक़द्दस, दूसरा बैतुल्लाह यानी काबतुल्लाह मक्का मुकरमा वाला, मगर कानून कुदरत दोनों के मुताल्लिक अलग अलग है। बैतुल्लाह की हिफाजत और कुफार का उस पर गालिब ना आना, ये अल्लाह ताला ने खुद अपनी अपनी जिम्मे ले लिया है। इसका नतीजा वो वाकया फील है जो कुरान करीम की सूरह फील में जिक्र किया गया है कि यमन के नसरानी बादशाह ने बैतुल्लाह पर चढ़ाई की तो अल्लाह ताला ने मां उसके हाथियों की फौज के बैतुल्लाह के करीब तक जाने से पहले ही परिंदे जानवरों के जरिए हलाल को बर्बाद कर दिया। ठीक है, यानी बैतुल्लाह की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने अपने पास रखा, किसी बंदों के जरिए से उसकी हिफाजत नहीं करवाई। ठीक है, तो उस जमाने में नबी अलैहिस्सलाम के दादा ख्वाजा अब्दुल मुतलिब उस जगह के बड़े थे, तो उन्होंने कोई अब्रहा बादशाह से लड़ाई वगैरह नहीं करी, बल्कि वो अपने जानवरों को और अपने कुरैश के कबीले को लेकर के जो है वो पहाड़ों के ऊपर चले गए। ठीक है, और जो अब्रहा का लश्कर था वो जब वादी में पहुंचा तो अबाबीलों के जरिए से अल्लाह ताला ने उसको हलाक करवा दिया। अबाबीलों के जरिए से, अबाबील भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं, लेकिन इंसानों को अल्लाह ताला ने इस्तेमाल नहीं किया बल्कि परिंदों को इस्तेमाल किया। और इसी तरीके से जो है वो यानी यही है कि आइंदा भी अल्लाह ताला जो है ना वो ऐसे ही बैतुल्लाह की हिफाजत करेंगे कि काफिर उसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकेंगे, काफिर उसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकेंगे। चुनाचे हदीस मुबारक से हमें पता चलता है कि जब दज्जाल का वक्त आएगा तो दज्जाल पूरी दुनिया में जाएगा और उसका कब्जा जो है वो पूरी दुनिया पर होगा, लेकिन बैतुल्लाह में वो दाखिल नहीं हो सकेगा, यानी हरम मक्का में भी दाखिल नहीं हो सकेगा और हरम मदीना मुनव्वरा में भी दाखिल नहीं हो सकेगा। कौन उसको रोकेगा? इंसान नहीं रोकेंगे, राइट? का मक्का मुकरमा के रहने वाले लोग नहीं रोकेंगे या उस इलाके के मुसलमान नहीं रोकेंगे, बल्कि फरिश्ते रोकेंगे जो कि अल्लाह ताला की मखलूक हैं। जिस तरह अबाबील अल्लाह ताला की मखलूक हैं, फरिश्ते भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं। लेकिन बैतुल मुकद्दस के साथ ऐसा उसूल नहीं, कि फरमाते हैं कि बैतुल मुकद्दस के मुताल्लिक ये कानून नहीं बल्कि आयात मज़कूरा से मालूम हुआ कि जब मुसलमान गुमराही और मासी में मुब्तला होंगे तो उनकी सजा के तौर पर उनसे ये क़िबला भी छीन लिया जाएगा और कुफ्फार उस पर गालिब आ जाएंगे। ठीक है, तो उस जमाने के मुसलमान वो थे ईसाई, और उससे पहले जो है वो यहूदी, और आज के जो मुसलमान हैं वो वही हैं जो के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के ऊपर ईमान लाने वाले हैं। ठीक है, आज अगर कोई ये कहना शुरू कर दे कि ईसाई भी मुसलमान है नाउज बिल्ला, और यहूदी भी मुसलमान है, क्योंकि वो पहले भी मुसलमान थे उस जमाने में जब वो मुसलमान थे, तो आज क्यों मुसलमान नहीं? भाई आज वो मुसलमान नहीं है, उसकी वजह यही है कि मुसलमान की तारीफ ये है कि जो मौजूदा नबी होते हैं, ठीक है, मौजूदा यानी जो उनके ऊपर जो नबी नाजिल हुए थे अल्लाह ताला की तरफ से, जो मबऊस हुए थे उनके ऊपर ईमान लाए, ठीक है, तब वो मुसलमान होते हैं। जिसने आगे वाले नबी को के ऊपर ईमान नहीं लाया तो वो मुसलमान नहीं होता, तो नबी अलैहिस्सलाम के नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाने वाला जो है वो मुसलमान नहीं होता। ठीक है, किसी ने सवाल लिखा है कि जी उनकी छोटी बेटी ने, इतनी भी छोटी नहीं है वैसे तो, है कि उसने पूछा कि क्या दज्जाल के माँ बाप मामा बाबा नहीं थे कि उसको समझाते कि गंदे नहीं होते, लोगों को तंग नहीं करते, और उसके मामा बाबा का नाम बताएं। है मामा बाबा, दज्जाल के मामा बाबा का जो नाम है ना वो तो नहीं है किताबों में, लेकिन इतना जरूर किताबों में लिखा है कि उसका या तो खान में उसका या तो बाप जिन था या माँ जिन थी, आई थिंक माँ जिन थी उसकी, और बाप जो है ना वो इंसान था। ठीक है, बस इतना ही है, उसके बाप का नाम नहीं है, और वो जो है वो अल्लाह ताला की सरकशी करने वाला एक इंसान, और मामा बाबा हर जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके मामा बाबा उनको नहीं समझाते कि मुसलमान हो जाओ। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों को बता दें कि भाई बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स भी तो होते हैं ना, तो माँ बाबा को खुद पता नहीं होता, या खुद जो है वो दीन इस्लाम को नहीं मानते, तो वो फिर अपने औलाद को कैसे समझाएं। ठीक है, अच्छा, मक्का मुकरमा से भी मुनाफिक ही निकल जाएंगे जैसे मदीना मुनव्वरा से। नहीं, मक्का मुकरमा के मुनाफिकीन के निकलने का तस्करा नहीं है, और जो जिसका नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं बताया तो हम भी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, जलजले के झटकों का जिक्र जो है वो मदीना मुनव्वरा में है, और मक्का मुकरमा में ऐसा नहीं है कि जब दज्जाल आएगा तो वहां पे जलजले के झटके आएंगे तो वहां से मुनाफिकीन निकल जाएंगे, ऐसा नबी अलैहिस्सलाम ने हमें नहीं बताया। ठीक है, तो बज़ाहिर इन इन हदीसों से ये मालूम होता है कि ये जो सारा का सारा स्टेज बिल्डअप होगा ना, ठीक है, ये मक्का मुकरमा में नहीं होगा बल्कि ये मदीना मुनव्वरा के अंदर होगा। मक्का मुकरमा का यहाँ तक जिक्र है कि इमाम मेहदी की जो जो अफवाज होंगी तो उनसे लड़ने के लिए जो है वो शाम का एक बादशाह अफवाज भेजेगा मक्का मुकरमा में, मक्का मुकरमा में लड़ने के लिए भेजेगा, लेकिन मक्का मुकरमा पहुंचने से पहले जो है जमीन फटेगी और वो सारे के सारे जो है वो जमीन के अंदर धस जाएंगे। ठीक है, और अजीब उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि उसके अंदर जो है ना वहां पर जो कामकाज के लिए वगैरह के लिए जो लोग मौजूद थे, तो जो कि उस फौज का हिस्सा नहीं थे जो इमाम मेहदी से लड़ने के लिए जा रही थी, लेकिन वो भी जमीन के अंदर धस जाएंगे। तो उससे ये भी पता चलता है कि जिस जगह ये जमीन फटेगी और वो शाम से आने वाली फौज उसके अंदर धंसेगी, तो ये कोई बिल्कुल ही रेगिस्तान का इलाका नहीं होगा जहां पर इस फौज के अलावा और कोई भी मौजूद ना हो, बल्कि उस जगह के रहने वाले या बाजार हटार करने वाले लोग भी वहां पर मौजूद होंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि इसका मतलब यह है कि वो आबादी तक पहुंच चुके होंगे, और आबादी में जो है वो इस तरह के यानी आम आम लोग भी मौजूद होंगे और वो भी जमीन के अंदर धंसा दिए जाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा और तफसील जो है मक्का मुकरमा की इसमें नहीं आती। बाकी मतलब वो सब हैं, से पहले वाला मामला, दज्जाल के आने से पहले वाली बातें तो हैं, लेकिन दज्जाल के आने के बाद की बातें मक्का मुकरमा के बारे में सच नहीं है, मदीना मुनव्वरा के बारे में ही है। तो मदीना मुनव्वरा में भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तो मदीना मुनव्वरा में मौजूद है ना, ठीक है, और इंसानों का मामला, ठीक है, इंसानों का मामला सिर्फ घर के साथ नहीं होता, सिर्फ दीवारों के साथ नहीं होता, बैतुल्ला जो है ये दीवारें हैं, ठीक है ना, ये एक फिजिकल घर है, ठीक है। बैतुल्ला के अंदर कोई इंसान नहीं है, लेकिन मदीना मनोवरा के अंदर बाकायदा अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम मौजूद है। खैर हाँ, तो ये एक अलग पूरी डिस्कशन है, तो आगे चलते हैं। आगे मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि काफिर भी अल्लाह के बंदे हैं मगर उसके मकबूल नहीं। ठीक है, अल्लाह के बंदे, जाहिर है काफिर भी, वो भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं और अल्लाह ताला ने उनको अपना बंदा बनाया, लेकिन ये कौन से वाले बंदे हैं? ये वो बंदे हैं जो के गंदे हैं, ठीक है, यानी अल्लाह की बात नहीं मानते। अल्लाह ताला की बात क्या थी कि मेरे नबियों को मान, मेरे नबियों के ऊपर ईमान लेकर क्या हो, लेकिन अल्लाह की बात नहीं मानी, इस वजह से ये काफिर कहलाए, इनकार करने वाले। तो फरमाते हैं कि मजकूर सदर पहले वाक्य में, यानी ऊपर जो पहले वाक्य वो, यानी 6 वाक्य लिखे हुए थे ना, तो पहले वाक्य में कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया है कि जब अहले दीन फितनों फसाद पर उतर आएंगे तो अल्लाह ताला उन पर अपने ऐसे बंदों को मुसल्लत कर देंगे जो उनके घरों में घुसकर उनको कत्लो गारत करी करेंगे। इस जगह कुरान करीम ने लफ्ज इबादल लाना, ठीक है, 6 वाक्यात में से पहला वाक्या तो शायद नहीं है, उलमा ने लिखा कि 6 में से ये चौथा वाला वाक्या था जो कि कुरान मजीद के हिसाब से पहला वाक्या बनता है, ठीक है, 2 वाक्यों में से पहला वाक्या। तो अल्लाह ताला ने ना वहां पर जो आयत नाजिल फरमाई थी कि फइजा जा वादु उलाहुमा, इन दोनों में से जब पहला वाला वादा हमारा आ जाएगा ना, बासना अलैकुम इबादल लना, तो हम भेजेंगे या हमने भेजे तुम्हारे ऊपर अपने बंदे, इबादल लना, ठीक है। तो इस जगह कुरान मजीद ने लफ्ज इबादल लना फरमाया है, इबादना नहीं कहा, इबादना, ठीक है, इबादना का मतलब हमारे बंदे। इबादी अक्सर जो होता है वो इबादी, जैसे अल्लाह ताला ने शैतान को फरमाया था कि इन्ना इबादी लैस लका अलैहिम सुल्तान, ठीक है, मेरे जो बंदे हैं ना तो तुम्हारा उनके ऊपर कोई जोर नहीं चलेगा, शैतान को ये फरमाया था, मेरे बंदों पर तुम्हारा कोई जोर नहीं चलेगा, तो वहां पर इबादी का लफ्ज इस्तेमाल किया, मेरे बंदे, ठीक है, और हमारे बंदे के लिए अरबी जुबान में इबादना बनेगा। तो ये ज्यादा मुख्तसर था, और कुरान मजीद के अंदर तो इख्तिसार है, कुरान मजीद अल्लाह ताला ने बहुत ही सेलेक्टिव बातें फरमाई हैं, मुख्तसर है। जैसे कुदरतन पिछले जुमे के बयान के अंदर भी ये वाली बात हुई थी कि हदीस मुबारक के अंदर तो बहुत ज्यादा तफसील है और बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं हदीस मुबारक के, लेकिन कुरान मजीद में तो ऐसा नहीं है ना, तो क्यों अल्लाह ताला ने जो है वो ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल किया और कम लफ्ज इस्तेमाल ना किया, हालांकि बजाहिर मतलब तो एक ही जैसा लगता है। तो फरमाते हैं उसकी तफसीर में कि वो हिकमत ये है कि किसी बंदे की इजाफत व निस्बत अल्लाह की तरफ हो जाना उसके लिए सबसे बड़ा एजाज, जैसे कि इसी सूरत के शुरू में असरा बे अब्दी ही के तहत में ये बताया जा चुका है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इंतहाई एजाज और गायत कुर्ब शबे मेराज में नसीब हुआ, कुरान ने इस वाकये के बयान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें ग्रामी या कोई सिफत बयान करने की बजाय सिर्फ अब्द ही कहकर ये बतला दिया कि इंसान का आखिरी कमाल और इंतहाई ऊंचा मकाम ये है कि अल्लाह ताला उसको अपना बंदा कहकर नवाजें, ठीक है, जिसके बारे में हमने बहुत तफसील से शुरू में बात करी थी कि हमारा इस दुनिया में आने का मकसद ही अल्लाह ताला का मकबूल बंदा बनना है, बंदा बनना है, हमने कोई ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंचे ऊंचे इमारतें बनानी या बड़े मजबूत किस्म के ब्रिज बनाने या जो है वो चांद पे पहुंच जाना, है ना, आजकल मुसलमानों को जो है वो एक फिक्र पड़ी हुई है, वो चांद पे पहुंच गए, हम चांद पे क्यों ना पहुंचे, ठीक है, अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें चांद पे पहुंचाने के लिए, पहुंचने के लिए भेजा ही नहीं था, ठीक है। अगर हम कुरान मजीद से अपनी जिंदगी के डायरेक्शंस लेते हैं तो कुरान मजीद में तो अल्लाह ताला ने बंदगी के लिए भेजा था, फरमा दिया ना, वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, ठीक है ना, आप बंदगी करें नहीं, गंदगी करते रहें और फिर आप चांद पे पहुंच जाएं, ठीक है ना, या आप बंदगी करें नहीं और गंदगी करते करते चाहें कि मैं चांद पे पहुंच जाऊं, तो इसके लिए तो अल्लाह ताला ने हमें भेजा ही नहीं था, ठीक है। हाँ, बंदगी कर करके फिर आप जो है वो दुनियावी तरक्की भी साथ साथ आपको मिलती जाए और फिर आप जो है वो दुनिया के अंदर भी अमन व अमान कायम करें और जो है वो जो लोग दुनिया के अंदर इंतहाई बुरी यानी बिलो पॉवर्टी लेवल और बिलो डिसेंसी लेवल जिंदगी गुजार रहे हैं, उन इंसानों के लिए आप एक अच्छा इंतजाम करें, और उसके बाद फिर आप जब दुनिया के मसाइल हल कर दें तो उसके बाद फिर जो है ना वो आप दुनिया के बाहर निकल करके इधर उधर भी एक्सप्लोरेशन वगैरह करें, ठीक है ना। तो उससे जो है वो थ्योरेटिकली इनकार नहीं किया जा सकता, थ्योरेटिकली ऐसा ही है, प्रैक्टिकली ऐसा कभी होने वाला है नहीं कि दुनिया के मसाइल हल कर दिए फिर उसके बाद जो है वो चांद के मसाइल हल करने के लिए निकल निकल खड़े हुए, ठीक है ना। लेकिन थ्योरेटिकली स्पीकिंग अगर आप ऐसा करें तो इसमें कोई मुजायका नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारा तो ये हाल है ना कि बंदगी तो हम बिल्कुल भूल चुके हैं, ठीक है ना, और गंदगी पे गंदगी, गंदगी पे गंदगी, ठीक है, रूहानी गंदगी भी और जिस्मानी गंदगी भी, और फिर उसके बाद जो है ना वो फिक्र पड़ी हुई है कि चांद पे क्यों नहीं पहुंचा अभी तक। तो ये तो बस अकल खराब हो जाए तो फिर ऐसी बात इंसान सोचता है। तो बंदा बनना ये हमारा मकसद था और यही हमारे लिए सबसे बड़ा एजाज है, और नबी अलैहिस्सलाम को ये सबसे बड़ा एजाज जो है वो अल्लाह ताला ने दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने उस जमाने में जो कैसर और किसरा वालों ने जो मादी तरक्कियां करी थी, ये कोई कहे ना कि अच्छा वो तो 1400 साल पहले की बात है, तो उस जमाने में तो जी वो स्काई स्क्रेपर बनती नहीं थी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने भी नहीं बनाई इसी वजह से, क्योंकि उस जमाने में भी स्काई स्क्रेपर नहीं बनती थी। नहीं, उस जमाने में भी बहुत सारी चीजें बनती थी, अहराम मिस्र जो है वो उससे हजारों साल पहले के थे, बैबलोन बाबुल के जो लटकते हुए बागात थे वो उससे भी बहुत पता नहीं 1000 साल पहले के बाबुल के लटकते हुए बागात, फिर उसके अलावा कैसर और किसरा के जो है वो महल्लात है ना, वो भी बड़े अजीम शान थे। नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए और बेस्ट बंदा बनने का एजाज भी हासिल कर गए अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन एक भी महल भी नहीं बनाया और एक जो है ना वो ना लटकते हुए बागात बनाए, ना जो है वो अहराम मिस्र बनाए, ना इस तरह की कोई चीज भी बनाई, ठीक है ना। लेकिन तमगा पा गए बंद अब्दी ही का, ठीक है। तो हमारे लिए फिर क्या है नमूना, हमारे लिए नमूना जो है वो कैसर है या किसरा है या नजाशी है, वो भी काफिर वाला नजाशी, मुसलमान नजाशी, तो फिर अगर हम उसकी बात मान उसको उसी को फॉलो कर लें तो कम से कम हम उस जैसा मुसलमान तो बन जाए ना। नजाशी तो सहाबी बन गया था, बाद वाला आखिर वाला नजाशी, हम सो नहीं बांधते इन लोगों को, तो इस वजह से बंदा तो हम बन के नहीं दे रहे। तो फरमाते हैं कि जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें ग्रामी या कोई सिफत बयान करने की बजाय सिर्फ अब्दी ही कहकर यह बतला दिया कि इंसान का आखिरी कमाल और इंतहाई ऊंचा मकाम यह है कि अल्लाह ताला उसको अपना बंदा कहकर नवाजें। आयत मस्कूरा में जिन लोगों ने बनी इसराइल की सजा का काम जिन लोगों से बनी इसराइल की सजा का काम लिया गया, ये खुद भी काफिर थे, इसलिए हक ताला ने उनको इबादना के लफ्ज से ताबीर फरमाने के बजाय इजाफत और निस्बत को तोड़कर इबादलना फरमाया, जिसमें इस तरफ इशारा है कि तकवीनी तौर पर तो सारे ही इंसान अल्लाह के बंदे हैं मगर बगैर ईमान के मकबूल बंदे नहीं होते, जिनकी निस्बत और इजाफत अल्लाह ताला की तरफ की जा सके, ठीक है। जब तक ईमान नहीं होगा उस वक्त तक कबूलियत नहीं होगी, और ईमान किस पर, अल्लाह पर ईमान नहीं, ईमान किस पर, अल्लाह पर ईमान नहीं कि अल्लाह को मानता है और अल्लाह ताला को खालिक मानता है, अल्लाह ताला को राजक मानता है तो इसका मतलब है कि मुसलमान नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह ताला को खालिक भी अबू जहल मानता था, अबू लहब भी मानता था, और अब्दुल्ला बिन उबई भी मानता था, ठीक है ना, और यहूदी भी मानते थे और मानते हैं, ईसाई भी अल्लाह ताला को जो है वो खालिक मानते हैं और मालिक भी मानते हैं, ठीक है, लेकिन मुसलमान नहीं है। क्यों? इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम को नहीं मानते का भी मतलब क्या, कि नबी अलैहिस्सलाम के हुक्मों को नहीं मानते, नबी अलैहिस्सलाम को जो है वो अल्लाह ताला का रसूल नहीं मानते और आखिरी रसूल नहीं मानते, जैसे कादियानी जो है वो भी नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल मानते हैं लेकिन आखिरी नबी नहीं मानते, इस वजह से वो भी मुसलमान नहीं, ठीक है। तो ईमान का मतलब क्या है, नबी, ठीक है, और नबी के ऊपर ना लाना ये फिर कुफर है। तो बहरहाल, तो आज के दौर में बहुत सारे, चूंकि क्योंकि हमारे यहाँ पिछले कई जनरेशन से जो है वो दीन की के उलूम व दीन की तालीम जो है वो नस्लों को नहीं दी जा रही, बल्कि काफिरों के बनाए हुए تعلیمی نظام کے اندر ہی ہم اپنے ارادوں کو ڈال رہے ہوتے ہیں، اور وہیں پر ان کی ذہن سازی بھی ہو رہی ہوتی ہے، وہیں پر ان کی قلب سازی بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد باقی رہی صحیح کسر جو ہے وہ میڈیا پوری کر رہا ہوتا ہے۔ میڈیا کے سامنے بھی بٹھا دیتے ہیں، چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ ٹیبس دے دیتے ہیں، فون دے دیتے ہیں، وہ اس کے اوپر جہاں کلک کریں کچھ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے کیا سن رہے ہیں، کہاں سے کیا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر بڑے ہوتے ہیں تو پھر ٹی وی کے سامنے جو ہے وہ ان کو ڈرامے، سیریل، فلمیں اور ٹاک شوز اور انالیسس، سنا جانے کیا کیا وہ سب سن رہے ہوتے ہیں نا۔ تو اس وجہ سے نا ان کے دلوں کے اندر ایسے ایسے خیالات آ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کافر جو ہے نا، یہ کیوں نہیں جائیں گے بھائی، یہ کیوں جنت میں نہیں جائیں گے؟ اور ان کو جو ہے نا وہ اور کچھ تو پتہ نہیں ہوتا، بس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی مولوی صاحب نے کہا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے، تو وہ کہتے ہیں مولوی صاحب کون ہوتے ہیں ان کو جنت سے روکنے والے، مولوی صاحب کون ہوتے ہیں ہے نا جنت سے روکنے والے، اور جہنم کا کوئی ٹھیکیدار ہے مولوی صاحب، ٹھیک ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی اور کیا ہوا تھا، کچھ نہیں پتا ہوتا، ٹھیک ہے۔ سیرت کے معاملے میں تو بالکل ہی ہم کورے ہوتے ہیں نا۔ تو اس وجہ سے ہے نا وہ اب بہت سارے مسلمان پچھلے 150 سال 200 سال میں ایسے بے شمار مسلمان ہیں کہ جن کو زیادہ اس بات کی فکر ہے کہ کافر جو ہے وہ جہنم میں چلے جائیں، اس مسلمان ہو کے نہیں، جیسے ہیں ویسے ہی چلے جائیں، ٹھیک ہے نا، ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ ہم دین کی دعوت کا کام کریں اور کافروں کو جو ہے وہ ایمان کے کی دولت سے جو ہے وہ روشناس کروائیں اور ان کو جو ہے وہ اسلام کے اوپر لے کر کے آئیں، نہیں، یہ سب کوئی تھوڑی، یہ سب بھی کچھ نہیں پتا اسلام کے بارے میں، تو دوسروں کو کیا بتائیں، بس یہی کہ وہ کیوں نہیں جائیں گے اور مسلمان ہی کیوں جائیں گے، مسلمان جھوٹ بولتا ہے۔ اچھا وہ جو جھوٹ بولتے ہیں آپ کے سامنے آ کے وہ بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نے آپ کی جو ہے وہ ساری جو ہے وہ دولت لوٹ لی ہے اور ہم نے آپ کو اس طریقے سے الو بنایا ہوا ہے، وہ آ کر کے آپ کو بولتے ہوئے تھوڑی ہیں، اس وجہ سے نا بیٹھے بیٹھے ان کی فلمیں دیکھ دیکھ کر کے نا، ان کے ڈرامے دیکھ دیکھ کر کے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو دنیا کے سچے انسان، سچے بھی ہیں اور سچے بھی ہیں، اور اتنے جتنا گورے نظر آتے ہیں اندر سے بھی گورے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ظاہر ہے ان کے تعلیمی نظام نے آپ کا ذہن ایسا بنا دیا ان کے بارے میں کہ ان کی برائی آپ کو برائی نظر نہیں آتی، اور ان کی یعنی ہر چیز ہی اچھائی نظر آتی ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ بہرحال ابھی ہمارے پاس تھوڑا اور ٹائم ہے تو ہم آگے کے آیات پڑھنا شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی ساتھ اس کو بریک چاہیے ہوگی ایک کام کے لیے۔ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن یہدی راہ بتلاتا ہے، للتی وہ جو کہ ہی اقوم، جو کہ سب سے زیادہ اقوم ہے، ٹھیک ہے، یعنی سب سے زیادہ سیدھی ہے، سب سے زیادہ یعنی اسٹیبلشڈ ہے، قائم ہے، ٹھیک ہے، قائم ان کہتے ہیں کھڑی، جو کھڑا ہوتا ہے اس کو قائم کہتے ہیں، اور اقوم جو ہے نا یہ اس کا اسم تفضیل ہے، سب سے زیادہ کھڑی، کھڑی کا مطلب، سب سے زیادہ کھڑی کا مطلب بالکل سٹریٹ کھڑی نہیں، بلکہ سب سے زیادہ مضبوط طریقے سے جو کھڑا ہوا ہے، اسٹیبلشڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جو کہ سب سے زیادہ فرم راستہ ہے، اقوم راستہ ہے، اور وہ یبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو بشارت دیتا ہے، الذین، وہ لوگ جو، ایمان والے کون ہیں، الذین کر کے اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، یعملون الصالحات، جو کہ نیک اعمال کرتے ہیں، ان لہم اجرن کبیرا، کیا بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے ہے ایک بڑا اجر، ٹھیک ہے، اجرن کبیرا، کبیر اجر ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ کام کرتا ہے کہ ایمان والوں کو، جو لوگ نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے ہیں ان کو جو ہے نا، اور نیک اعمال بھی کرتے ہیں، یعملون الصالحات، ان کو بشارت دیتا ہے، اور وہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرت، اور یہ کہ وہ لوگ جو کہ نہیں ایمان لائے لاتے آخرت کے اوپر، جو نہیں مانتے آخرت کو، اعتدنا لہم عذابا علیما، کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اعتدنا، ہم نے تیار کر کے رکھا ہے، لہم ان کے لیے، عذابن، عذاب، علیمن، علیم کا مطلب رنج و الم پہنچانے والا، الم کہتے ہیں نا دکھ کو، ठीक है, तो उसको दर्दनाक से भी, दुख और दर्द, ठीक है, दुख पहुंचाने वाला और दर्द पहुंचाने वाला अजाब कुरान मजीद जो है ना वो ये भी करता है। सिर्फ ईमान वालों को बशारत नहीं बल्कि जो आखिरत का इनकार करने वाले हैं उनको अजाब से डराता भी है। वो यदउल इंसानु, और इंसान मांगता है, दुआ करता है, दआ यदउ मतलब दुआ करना, तो यदउल इंसानु बिश्शर्री दुआहु बिलखैर, और मांगता है आदमी बुराई जैसे मांगता है भलाई, मांगता है आदमी बुराई जैसे मांगता है भलाई। वकान अल इंसानु अजूला, और इंसान तो है अजूल, उजलत पसंद, अजूल का मतलब बहुत ज्यादा जल्दबाज, बहुत ज्यादा उजलत चाहने वाला, जल्दी चाहिए मुझे, जल्दी चाहिए चीजें, ठीक है ना। तो वो जल्दी के अंदर जो है वो अपना खैर यानी जल्दी में जो है ना वो उसको इसकी भी परवाह नहीं रहती कि क्या मैं खैर मांग रहा हूं या मैं शर मांग रहा हूं, ठीक है ना। तो बजाहिर उसको जो चीज नजर आ रही होती है कि जी मेरे लिए ये फायदेमंद है, ये मेरे लिए जो है ना वो अच्छी है, मुझे मजा आएगा इस चीज के अंदर, तो वो जल्दबाजी में इतनी तहकीक नहीं करता कि क्या वाकई ये मेरे लिए अच्छी है, क्या वाकई मेरे लिए फायदेमंद है, या बजाहिर फायदेमंद नजर आ रही है लेकिन असल में तो ये बहुत नुकसानदेह है, ठीक है ना। तो जल्दबाजी के अंदर जो है ना वो मांगना शुरू कर देता है। मांगने का मतलब सिर्फ जो है वो दुआ मांगना नहीं बल्कि मांगने का मतलब कि ऐसा अमल भी करना शुरू कर देता है उसको हासिल करने के लिए, है ना। अब इन आयात का रब्त हजरत लिखते हैं, तर्जुमे में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लिएगा। हाँ, तो आयात का रब्त जो है वो पिछली आयात से क्या बनता है, तो यहाँ पे हजरत ने रब्त आयात करके, क्योंकि बजाहिर लगता है कि जी बनी इसराइल की बात हो रही थी और एकदम से जो है ना वो ये एक बड़ी जनरल प्रिंसिपल कहाँ से अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया। तो फरमाते हैं कि शुरू सूरत में मुअज्जाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि मुअज्जाए मेराज से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत का बयान था। इन आयात में मुअज्जाए कुरान से उसका इस्बात है, ठीक है, यानी कुरान मजीद का अब तज़किरा शुरू कर दिया अल्लाह ताला ने, ठीक है। तो इससे ये नबी अलैहिस्सलाम का मौजजा था कुरान मजीद, और इस मौजजे के जरिए से जो है ना वो नबी अलैहिस्सलाम के उस शान का जो कि मेराज के सफर में उनको अल्लाह ताला ने अता करी थी उसको मजीद साबित कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो खुलासे तफसीर का मतलब, खुलासे तफसीर में लिखते हैं कि बिलाशुबा ये कुरान ऐसे तरीके की हिदायत करता है जो बिल्कुल सीधा है यानी इस्लाम, और उस तरीके के मानने और ना मानने वालों की जजा व सजा भी बतलाता है, कि उन ईमान वालों को जो नेक काम करते हैं ये खुशखबरी देता है कि उनको बड़ा भारी सवाब मिलेगा, और ये भी बतलाता है कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते हमने उनके लिए एक दर्दनाक सजा तैयार कर रखी है। ये कुरान मजीद हमें बताता है। तो हमारा काम क्या है कि हम जो है ना कुरान मजीद को समझने के ऊपर फिक्र करें, समझने के लिए फिक्र करें, ठीक है, कि अल्लाह ताला के कलाम है ये हमें हकीकतें बता रहा है अल्लाह ताला की जुबानी, ठीक है। तो क्या हम इस कुरान मजीद को हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसके अंदर से हमें हकीकतें पता चले। तिलावत करने से सवाब मिलता है, बिल्कुल मिलता है सवाब, ठीक है, एक एक हर्फ के ऊपर 10 नेकियां मिल रही होती हैं, लेकिन तिलावत करने से जो है ना वो अल्लाह ताला क्या बताना चाह रहे हैं ये तो नहीं पता चलता ना। तो उसके लिए तो फिर कुरान मजीद के अंदर तदब्बुर करना पड़ेगा। अफला ये तदब्बरून अल कुरान, क्या ये कुरान मजीद में तदब्बुर नहीं करते, ठीक है, अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में फरमाते हैं, क्या ये कुरान मजीद में तदब्बुर नहीं करते। अम अला कुलूबिहिम अक्फालुहा, या ये कि इनके दिलों के ऊपर ताले पड़े हुए हैं, इनके दिलों के ऊपर ताले पड़े हुए हैं, इनके कुलूब के ऊपर कुफल पड़े हुए हैं, ताले पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अम जो है ना ये कुछ चंद आप में से लोग जो है पहले भी शायद सुन चुके होंगे कि अम जो है ना एक ऐसा लफ्ज होता है कि जिससे पहले जो बात की जा रही है या तो वो सच है या उसके बाद जो बात की जा रही है वो है, ठीक है। तो पहले अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि ये लोग कुरान मजीद के ऊपर क्या तदब्बुर नहीं करते, ठीक है, यानी या तो इंसान जो है वो कुरान मजीद पे तदब्बुर करने वाला हो, अम अला कुलूब है मकफारुहा, इनके कुलूब के ऊपर कुफल पड़े हुए, तो यानी जो तदब्बुर नहीं करता उसके लिए फिर अब दूसरा ऑप्शन यही है कि उसके कुलूब के ऊपर ताले पड़े हुए। तो हम अगर हम तो नहीं कुरान मजीद के ऊपर तदब्बुर करते ना, हम तो पता ही नहीं होता कि क्या लिखा हुआ है उसके अंदर और क्या अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे कुलूब के ऊपर नाउज बिल्ला ताले पड़े हुए। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना कुरान पर तदब्बुर करना ये एक मुसलमान के करने का काम है। दिस इज ए यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। ठीक है, और ये हम कैसे कर सकते हैं, ये अरबी जुबान के समझे बगैर सीखे बगैर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम कोशिश करके अरबी जुबान सीखें। ठीक है, और कम अज कम जो है वो अपनी औलाद को इस रास्ते के ऊपर डालें कि वो अरबी जुबान सीख सके। ठीक है, हमने अपनी जिंदगी जाया कर दी, किसी की उम्र 30 साल है, किसी की 40 है, किसी की 50 है, किसी की 60 है, 60 साल है, हम अरबी जुबान सीख करके अपनी जिंदगी को कुरान मजीद के ऊपर तदब्बुर में नहीं लगा सके, लेकिन कम अज कम इसका कफारा जो है वो हम अपनी औलाद की शक्ल में कि उनको तो अरबी जुबान सिखाए ना। ठीक है, तो इसका हमें एहतमाम करना चाहिए कि हमारी औलाद जो है वो अरबी जुबान सीखे। ठीक है, अच्छा, तो फरमाते हैं कि बाज इंसान जैसे कुफार हैं, बुराई यानी अजाब की ऐसी दुआ करता है कि जिस तरह भलाई की दुआ की जाती है, और इंसान कुछ कुछ तबान ही जल्दबाज होता है, यानी तबीयत में इंसान की जो है वो जल्दबाजी है, अगरचे कि ये फायदेमंद नहीं है उसके लिए, लेकिन तबीयत में उसमें ये एक खिमार है उसकी तबीयत के अंदर, जैसे और बहुत सारी चीजें हमारी तबीयत के अंदर। ठीक है, उसी तरह जल्दबाजी भी अल्लाह ताला ने पैदा करी है हमारे अंदर। इस दुनिया की जिंदगी में आकर के हमें इन चीजों को अल्लाह ताला के हुक्मों के ताबे लेकर के आना है, यही दुनिया में आने का हमारा मकसद है। ठीक है, कि जो हमारे अंदर जो कमियां कोताहियां हैं ना, उनको जो है वो हमने कंट्रोल कंट्रोल करना है, ये टास्क लगा के अल्लाह ताला ने हमें भेजा है इस दुनिया के अंदर। ठीक है, कि जल्दबाजी को हमने काबू में करना है, इतदाल के अंदर लेकर के आना है। मारूफ मसाइल इन आयात के, किसी को खुलासा तफसीर पे सवाल पूछना हो तो लिख करके पूछ लीजिए या तर्जुमे के ऊपर। मारूफ मसाइल में हजरत लिखते हैं कि तरीक़े अकवाम, तरीक तरीक जो है वो रास्ते को असल में कहते हैं, अकवाम तरीक़े अकवाम, सॉरी अकवाम नहीं अकवाम। ठीक है, जो कि आयत के अंदर जिक्र है। तो फरमाते हैं कि कुरान जिस तरीके की हिदायत करता है उसको अकवम कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर अकवम कहा गया और सूरह फातिहा के अंदर इसी तरीके को जो है वो सिरात मुस्तकीम कहा गया, इस्तेकामत वाला तरीका, और मतलब वो वहां पर भी वही है। ठीक है, वही कवमा, दोनों की जो बेस है ना वो कवमा ही, अकवम का भी कभी जो असल है हरूफ असली क्या है कवामा। ठीक है, और मुस्तकीम के भी हरूफ असली जो बेस लेटर्स हैं वो भी कवामा है। तो कुरान जिस तरीके की हिदायत करता है उसको अकवम कहा गया है। अकवम की तफसीर ये है कि वो रास्ता जो मंजिल मकसूद तक पहुंचाने में करीब भी हो, आसान भी हो, खतरात से खाली भी हो। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ, सेफेस्ट पाथ, ठीक है, एंड सिंपलेस्ट पाथ, सिंपलेस्ट। ठीक है, तो ये तीनों खसूसियात जिस रास्ते के अंदर हो ना वो अकवम रास्ता कहलाता है। अब हमारे जो दुनिया के अंदर हम हाईवेज देखते हैं, बड़ी बड़ी जो शाहराएं देखते हैं, तो वो आसान तो होती हैं, ठीक है, सीधी होती हैं, और जहां भी अगर टर्न भी है तो भी बड़ा अच्छा सा उन्होंने टर्न बनाया हुआ होता है, खतरात से खाली। अगर मुल्क के अंदर सिक्योरिटी वगैरह का सिस्टम है तो खतरात से भी वो खाली होंगी, कि ऐसा नहीं है कि आगे डाकू बैठे होंगे, है ना, अगर मुल्क के अंदर ये निज़ाम है, वरना पाकिस्तान वगैरह में तो ऐसा नहीं होता, कई बार डाकू वगैरह होते हैं, लेकिन जैसे सऊदी अरब के अंदर है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर जो है वो इस किस्म के खतरात जो है वो हाईवे के ऊपर, बड़ी हाईवे के ऊपर नहीं होते। ठीक है, लेकिन शॉर्टेस्ट जो है ना वो नहीं हो पाती है, बल्कि किसी ना किसी रीजन की वजह से ना इनका इनके जो जो लेंथ है वो कभी लंबी भी हो जाती है। ठीक है भाई, सामने अगर पहाड़ आ गया तो अब पहाड़ के ऊपर जो है ना वो हाईवे नहीं बनाई जाती, बल्कि पहाड़ से अराउंड करके जो है ना घुमा करके फिर हाईवे बनाई जाती, और इस तरह के जो है वो लंबे रास्तों में ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं। तो अक्वम जो रास्ता है वो तीनों क्वालिटीज का हामिल हो। इससे मालूम हुआ कि कुरान करीम इंसानी जिंदगी के लिए जो अहकाम देता है वो इन तीनों औसाफ के जामिल हैं। अगरचे इंसान अपनी कोताह फहमी की वजह से बाज औकात इस रास्ते को दुश्वार या पुरखतर समझने लगे, लेकिन रब्बुल आलमीन जो कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म रखता है और माजी व मुस्तकबिल उसके सामने यकसां है, वही इस हकीकत को जान सकता है कि इंसान का नफा किस काम और किस सूरत में ज्यादा है। और खुद इंसान चूंकि मजमूई हालात से वाकिफ नहीं, वो अपने भले बुरे को भी पूरी तरह नहीं पहचान सकता। ठीक है, तो हमारे पास तो बहुत ही कम इल्म है ना, हम तो बस जो हमारे सामने नजर आ रहा है वो हमें नजर आ रहा है। हत्ता कि हम अभी जहां बैठे हुए हैं तो हमारे सामने अगर दीवार है तो हमें नहीं पता कि दीवार के पीछे क्या हो रहा है। आपको पता है कि दीवार के पीछे क्या हो रहा है? मुझे तो नहीं पता। ठीक है, अच्छा, जो सामने नजर आ रहा है वो भी एग्जैक्टली उसकी क्या हकीकत है ये भी हमें नहीं पता। बहुत सारी चीजों को हम देख रहे होते हैं, आंखों से, कानों से सुन रहे होते हैं, हाथों से जो है वो परसीव टच टच करके फील कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम उसकी असल माहियत को नहीं पहचान पाते। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर आप जो है वो अच्छी सी एक बिरयानी आपके सामने पड़ी हुई है, ठीक है ना, और आप जो है बिरयानी को यानी आंखों से देख भी रहे हैं और जो है वो उसके अंदर से अच्छा अच्छा धुआं भी उठता हुआ देख रहे हैं और बड़े जबरदस्त किस्म की उसके ऊपर ड्रेसिंग भी हुई हुई है वगैरह, ठीक है ना, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उस बिरयानी के अंदर जो है ना वो नमक भी है कि नहीं है, नमक कम तो नहीं है, है ना, तो वो उसके लिए जो है वो आपको अल्लाह ताला ने फिर टेस्ट बड्स दिए। जब तक मुंह के अंदर नहीं डालेंगे उस वक्त तक नमक का नहीं पता चलेगा, आंखों से देख के नमक का नहीं पता चला। ठीक है, अच्छा, चले भी हम कहें कि जी हम नमक का भी पता कर सकते हैं, ठीक है, आंख वो मुंह से टच करके, ठीक है, लेकिन अब इसने जब पेट में जाना है तो पेट में जाकर के इस बिरयानी ने क्या करना है हमारे लिए, ठीक है ना, जैसे किसी ने यहाँ पे लिखा उसमें जहर मिला हुआ है ना, मुंह से खाने के बाद भी जहर का पता नहीं चलेगा, वो तो जब पेट में पहुंचेगी और पेट में जाकर के उसने क्या करना है तो उसके बाद पता चलेगा, वो भी इट्स टू लेट, है ना। अब जहर जो है वो जरूरी तो नहीं कि बस मार देने वाली चीज को जहर, एक तो फूड पॉइजनिंग भी तो वो भी तो एक जहर ही हो जाता है ना, फूड पॉइजनिंग जो हो जाती है जिसके बाद फिर कभी अस्पताल भी जाना पड़ जाता है, ठीक है ना, तो ये हमने अपने 5 सेंसेस से पता ही नहीं कर सकते, हालांकि हमारे सामने चीज मौजूद है, हम उसको अपने मुंह के अंदर से पेट के अंदर भी उतार रहे हैं, लेकिन देन इवन देन वी डोंट नो क्या करेगा वो हमारे साथ। तो हमारे इल्म का जो है ना वो ये हाल है, हमारा इल्म इतना महदूद है, इतना कमतर है हमारा इल्म, ठीक है ना। अब इस इल्म की बुनियाद पर जो है ना वो हम फैसले करते हैं कि जी फलानी चीज मेरे लिए सही है, फलानी चीज मेरे लिए गलत है, हालांकि जिसका इल्म मुहीत है हर चीज के ऊपर, हर चीज को जो है वो जिसका इल्म जो है वो अपने अंदर इहाता किया हुआ है, हर चीज को जानने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत, वो हमें इसके खिलाफ कोई चीज बता रहा होता है, लेकिन हम कहते हैं नहीं, जो मैं देख रहा हूं, जो मैं समझ रहा हूं ना, वही सही है, और जो कुरान मजीद बता रहा है वो सही नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर हमें एतमाद नहीं है, उसके ऊपर हमें हम बात नहीं मानते, और अपने इल्म को जो कि इतना इतना यानी घटिया इल्म है हमारा, ये ठीक है, तो यही चीज जो होती है ना फिर इंसान को हर जगह नुकसान पहुंचाती है। तो अब अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा रहे हैं, तो भाई कुरान मजीद में जो फरमा रहे हैं तो उसको ही तो नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताया, ठीक है, कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं इसका मतलब ये है, और फिर नबी अलैहिस्सलाम की बताई हुई बातों को हमारे जो उलमा और मशायख हैं वो हमारे सामने एक्सप्लेन करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे बताया था और आज की दुनिया के हिसाब से जो है वो उसका ये मतलब बनता है, और हम जो है वो कहते हैं कि नहीं, है ना, आप की बात हमने नहीं माननी है, हमने तो जो है वो अपनी अकल को इस्तेमाल करना है और अपने इल्म को इस्तेमाल करना है, ठीक है, इसी वजह से फिर चोट खाते हैं और बुरी तरीके से फिर उसका हमारा नुकसान, हमें नुकसान पहुंचता है। चंद अल्फाज हैं और पढ़ के फिर हम ये क्लास खत्म करते हैं, कि शायद इसी मुनासबत से मजकूरा आयात में से आखिरी आयत में जिक्र फरमाया है कि इंसान तो बाज औकात जल्द जल्दबाजी में अपने लिए ऐसी दुआ मांग देता है जो उसके लिए तबाही व बर्बादी का सबब है, अगर अल्लाह ताला उसकी ऐसी दुआ को कबूल फरमा लें तो ये बर्बाद हो जाए, मगर अल्लाह ताला अक्सर ऐसी दुआओं को फौरन कबूल नहीं फरमाता, यहाँ तक कि खुद इंसान समझ लेता है कि मेरी ये दुआ, मेरी ये दरख्वास्त गलत और मेरे लिए सख्त मुजिर थी। और आयत के आखिरी जुमले में यानी अल्लाह ताला जो है ना वो हलीम है और हमारी बहुत सारी गलतियों के ऊपर अल्लाह ताला हमें ढील दे देते हैं, मोहलत दे देते हैं। ठीक है, हम इस तरह की दुआ वाली गलती भी अक्सर कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कबूल नहीं करता ऐसी वाली दुआ को। ठीक है ना, और कभी कभी जो है ना वो बंदा इतना ज्यादा जो है वो सरकशी का शिकार हो चुका होता है, मुबतला हो चुका होता है, कि अल्लाह ताला फिर ऐसी दुआ को कबूल भी कर लेते हैं। लेकिन वो कभी कभी बहुत कम होता है ऐसा, ज्यादातर ऐसा होता है कि जैसे आपका बच्चा होता है ना, ठीक है ना, आपका बच्चा जो है वो आपसे कोई ऐसी चीज मांग रहा है कि जो कि उसके लिए बहुत नुकसानदेह है, तो आप क्या करते हैं, उसकी बात को जो है वो इग्नोर करते रहते हैं। बच्चा है, उसको क्या पता, समझाते भी हैं उसको लेकिन फिर भी नहीं मान रहा, जो है वो आप उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, आप उसकी बात पूरी नहीं कर रहे होते, कम अज कम अकलमंद वालदैन जो है वो पूरी नहीं कर रहे होते बच्चे की ऐसी बातों को। हालांकि मोहब्बत तो होती है ना उनको अपने बच्चे से, लेकिन कभी जो है ना वो इतना तंग करता है, इतना जो है ना वो आपको बल्कि अजियत पहुंचाता है कि आप कहते हैं अच्छा नहीं मान रहा ना, चलो मैं तुम्हारी ये वाली बात पूरी कर देता हूँ ताकि तुम्हें भी लग पता जाए कि तुमने मतलब तो क्या किया हुआ है ना। ठीक है, कितना तुमने मुझे तंग किया है, चलो मैं तुम्हारी इस बात को पूरा करके तुम्हें ये चीज दे देता हूँ, और फिर तुम्हें उससे पता चलेगा कि क्या कितना नुकसान वाले वाली चीज थी। ठीक है, तो अल्लाह ताला अक्सर ऐसी दुआओं को फौरन कबूल नहीं फरमाता, यहाँ तक कि खुद इंसान समझ लेता है कि मेरी ये दरख्वास्त गलत और मेरे लिए सख्त मुजर थी। और आयत के आखिरी जुमले में इंसान की एक तभी कमजोरी को बतौर जाब्ते के भी जिक्र फरमाया है कि इंसान अपनी तबीयत से ही जल्दबाज वाकई हुआ है, सरसरी नफा नुकसान पर नजर रखता है, अंजाम बीनी और आखिरत अंदेशी में कोताही करता है, फौरी राहत चाहे थोड़ी हो उसको बड़ी और दायमी राहत पर तरजीह देना शुरू कर देता है। इस तकरीर का हासिल ये है कि इस आयत में आम इंसानों की एक तबी कमजोरी का बयान है। ठीक है, अल्लाह ताला हमें हमारे बारे में भी बता रहे हैं ना इस कुरान के अंदर। ठीक है, कि देखो तुम्हारे अंदर जो है ना वो अल्लाह ताला ने ये सब कुछ दे करके पैदा किया तुम्हें। ठीक है, ये तभी हालत है तुम्हारी। ठीक है, अब हमें ये वाली के जल्दबाजी वाली जो हमारी तबीयत है, ये हमें हतमी तौर पे कौन बता सकता है, सिर्फ वही बता सकता है जिसने हमें बनाया है। ठीक है ना, बाकी तो फिर हम तजुर्बात और मुशाहदात की बुनियाद पर अच्छा वाकई जल्दबाजी है और लेकिन 100% श्योरिटी के साथ तो हम नहीं कह सकते ना कि अच्छा हमारे अंदर जो है पैदाइशी तौर पर जल्दबाजी थी, लेकिन जब पैदा करने वाले ने बता दिया कि तुम्हारे अंदर जल्दबाजी है, तो अब ये कंफर्म खबर हो गई हमारे बारे में। अब हमारा काम क्या है, अब इसके ऊपर मजीद तहकीक करने की जरूरत नहीं है कि अच्छा जल्दबाजी जो है वो कैसे पैदा हो गई और क्या हो गई और कैसी शक्ल में निकल पाई। जल्दबाजी है, बता दी अल्लाह ताला ने, अब तो हमारा काम ये है कि इस जल्दबाजी के नुकसान से अपने आप को बचाना है। ठीक है, बाज आइमा तफसीर ने शायद को एक खास वाकई के मुताल्लिक करार दिया है, वो ये है कि नवर बिन हारिस ने इस्लाम की मुखालफत में एक मरतबा ये दुआ कर डाली, अल्लाहुम्मा इन काना हादा हुवल हक मिन अंदिका फअम्तर अलैना हिजारतन मिन अस्समाई अव ऐतना बिअज़ाबिन अलीम, यानी या अल्लाह अगर आपके नजदीक ये इस्लाम ही हक है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा दे या कोई और दर्दनाक अजाब भेज दे। इस सूरत में इंसान से ये खास इंसान या जो उसके हम तबाह हों मुराद होंगे। यानी एक तफसीर में ये भी है कि यानी कुछ आयमा तफसीर ने ये भी फरमाया कि ये जो आयत है ना, ये बाकायदा इसका शान नुजूल ये है कि नवर बिन हारिस एक वो था मक्का मुकरमा के अंदर एक नबी अलैहिस्सलाम का दुश्मन काफिर था, तो उसने इस तरह की दुआ भी कर डाली थी अल्लाह ताला से। अल्लाह को मानते थे ना, अल्लाह की बैत की हिफाजत करने का की जिम्मेदारी उठाए हुए थे, अल्लाह से दुआएं मांगते थे। जैसे अबू जहल की भी दुआएं जो है वो हमने बाकायदा सीरत कास के अंदर पढ़ी हैं कि उसने कैसी कैसी दुआएं मांगी थी अल्लाह ताला से। ठीक है, तो इस आयत का ये शान नुज़ूल है, ये कुछ मुफस्सरीन ने फरमाया। वट शुड बी डन टू इम्प्रूव आवर सेल्व्स, वट शुड बी डन टू इम्प्रूव आवर सेल्व्स, इम्प्रूव विच वन इज मुराकबा इनफ, तौबा। ठीक है, अल्लाह ताला से जो है ना वो तमाम गुनाहों के ऊपर जिनको हम गुनाह समझते हैं उन पर भी अल्लाह ताला से तौबा करनी, और जिनको हम गुनाह नहीं समझते उसके ऊपर भी अल्लाह ताला से तौबा करनी, यानी एक ब्लैंकेट तौबा जो है ना वो सबसे पहली चीज है करनी, सबसे पहली चीज अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। तौबा के बगैर जो है ना वो किसी की कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो सकती। अच्छा, अब कोई कहे कि अच्छा ये तो मेरे समझ में नहीं आती ये वाली बात कि तौबा के बगैर जो है कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो सकती, हमने तो तौबा करी हुई है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमने तौबा नहीं करी हुई है। हम ये समझ रहे हैं कि हम जो है ना वो इबादतों की मिकदार बढ़ाने से हमारी कंडीशन इम्प्रूव हो जाएगी, इबादतों की मिकदार बढ़ाने से हमारी कंडीशन इम्प्रूव हो जाएगी, और हम उसी को तौबा समझ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। नफलों की तादाद बढ़ा देना, चाहे वो मुसल्ले की नफलें हों, चाहे जो है ना वो क्या कहते हैं मक्का मुकरमा में जाके नफिल तवाफ करना हो, ठीक है, या जो है वो नफली चैरिटी करना हो, या इनसे इनसे कंडीशन नहीं बदलती। कंडीशन बदलती है गुनाहों पर तौबा करने से, ठीक है, माफी मांगने से और गुनाहों को छोड़ देना, ये तौबा होती है। नफलें बढ़ा देना ये तौबा नहीं होती, ठीक है। तो जब तक तौबा नहीं करेंगे उस वक्त तक कंडीशन इंप्रूव नहीं होंगी। और अब तो इंडिया का तो इतना बुरा हाल अभी नहीं हुआ हुआ, लेकिन पाकिस्तान में अल्लाह खैर फरमाए, जिस किस्म के हालात इस वक्त बन रहे हैं ना, इन्फ्लेशन और बिजली का क्राइसिस और जो है ना वो दूसरे इस किस्म के, यानी ऐसे हो रहे हैं कि जो अब तक जो है ना मुतमईन थे भी ना, तो वो भी अब बिलबिलाना शुरू हो गए। जो अब तक मुतमईन थे ना, वो भी बिलबिलाना शुरू हो गए, सिवाय उन लोगों के जो कि अल्लाह ताला से रुजू करके अपने गुनाहों की तौबा कर माफी मांग करके अल्लाह ताला के दीन के काम में लग गए हैं ना, उनके अलावा हर बंदा इस वक्त बिलबिला रहा है, हर बंदा इस वक्त बिलबिला रहा है, यानी कमर तोड़ जिसको कहते हैं ना। तो वही पिछले जुमे को जो है वो सुधीर ने ये बात करी थी कि काश के ये जो महंगाई आई हुई है हमारे ऊपर, ये हमारे नफ्सों को तोड़ दे, हमारे नफ्स की जो अकड़ है ना, अकड़, इस अकड़ को तोड़ दे, कमर को तोड़े ना तोड़े, अकड़ को तोड़ दे कम से कम, नफ्स वाली अकड़ को, ठीक है ना। तो ये भी घाटे का सौदा नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला से हमें आफियत की दुआ मांगनी चाहिए कि भाई इसके बगैर ही है ना, कमर तोड़े बगैर ही हमारे नफ्स टूट गए। नफ्स टूटना तो हमारा मकसूद है, हमारी जिंदगी का मकसद है कि हमारा नफ्स टूट जाए। हमें इस दुनिया में भेजा ही इसलिए क्या, भेजा ही इसलिए गया है। बंदगी, बंदगी इज इक्वल टू नफ्स का टूटना, बंदगी इज इक्वल टू नफ्स का टूटना। अगर नफ्स नहीं टूटा, बंदगी नहीं कर सके, ठीक है। तो ये तो मकसद है हमारा, कमर तोड़ना हमारा मकसद नहीं है। हम नहीं चाहते कि दुनिया में हमारी कमर टूट जाए, और ना हमें इसकी दुआ करने की जरूरत है, और ना हमें जो है ना उसको अचीव करने की जरूरत है। नफ्स तोड़ना जो है ये अचीव करने की, ये हमारा गोल है जिंदगी का, ठीक है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी कमर तोड़े बगैर ही हमारी नफ्स को तोड़ दे, ठीक है ना, और आफियत के साथ हमें सही मानों में सच्ची तौबे की तौफीक अता फरमा दे। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।